SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au. Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज के संक्षिप्त समाचार वृषाली जैन के साथ। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी का कहना है कि तस्मानिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स में लगी आगें आने वाले कठिन बुशफायर सीजन का संकेत हो सकती हैं। न्यू साउथ वेल्स में शनिवार सुबह तक लगभग 76 बुशफायर और घास की आगें जल रही थीं, जिन्होंने कुलवोंग में कम से कम 12 घर और बुलाडिला में 4 घर नष्ट कर दिए हैं। प्रीमियर क्रिस मिंस का कहना है कि आपातकालीन सेवाओं को एक विषम दिसंबर के लिए तैयार रहने को कहा गया है। तस्मानिया में डॉल्फिन सैंड्स के ईस्ट कोस्ट पर लगी बेकाबू आग में दर्जनों घरों, इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और 2 फायर फाइटर्स घायल हुए हैं। वहीं पिछले सप्ताह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक किसान की मृत्यु तब हो गई थी जब वे अपने खेत को तेजी से फैलती आग से बचाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर मेलबर्न में SBS दफ्तर के बाहर सैकड़ों प्रो पैलेस्टाइन प्रदर्शनकारी जमा हुए हैं, जिन्होंने नेटवर्क से यूरोविजन का बहिष्कार करने की मांग की है। सार्वजनिक प्रसारक पर दबाव है कि वे यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का प्रसारण ना करें, क्योंकि रूस को यूक्रेन पर हमले के बाद प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया था, लेकिन इसराइल को अभी भी भाग लेने की अनुमति है। इस निर्णय के बाद कि इसराइल प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है, आयरलैंड, स्लोवेनिया, स्पेन और नीदरलैंड ने इवेंट का बहिष्कार करने की घोषणा की है। मेलबर्न में प्रदर्शनकारियों ने SBS न्यूज से कहा कि इसराइल को प्रतियोगिता में शामिल करने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गाजा में की जा रही उसकी कार्यवाही को स्वीकार्य मान रहा है। SBS के आधिकारिक बयान के अनुसार किसी देश की भागीदारी या बहिष्कार के आधार पर निर्णय लेना SBS की संपादकीय स्वतंत्रता और निष्पक्षता को कमजोर करेगा। दूसरी ओर रिजर्व बैंक सोमवार को इस साल की अपनी अंतिम बोर्ड बैठक के लिए तैयार हो रहा है, जहां ब्याज दरों में किसी बदलाव की संभावना कम मानी जा रही है। आधिकारिक कैश रेट 3.6% पर ही बने रहने की उम्मीद है। मंगलवार को होने वाला ये फैसला उस समय आ रहा है जब रिजर्व बैंक ने 2025 की शुरुआत में एक रेट कट किया था, जिसके बाद 2 और कट हुए थे, जिससे पूरे साल उधारकर्ताओं को महंगाई के दबाव से कुछ राहत मिली थी। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ोतरी ने निकट भविष्य में किसी और ब्याज दर में कटौती की उम्मीद को कम कर दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक वार्षिक मुद्रास्फीति 3.6% से बढ़कर 3.8% हो गई है, जो रिजर्व बैंक के 2-3% के लक्ष्य से काफी ऊपर है। वहीं इंडिजिनस नेताओं ने वैटिकन से 61 सांस्कृतिक कलाकृतियों की वापसी का स्वागत किया है, जिसे रिकंसिलिएशन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 2006 से फर्स्ट नेशंस, इनुइट और मेटिस समुदायों ने वैटिकन से अनुरोध किया था कि वे अपनी संग्रहित इंडिजिनस वस्तुओं को लौटा दें। असेंबली ऑफ फर्स्ट नेशंस की राष्ट्रीय प्रमुख सिंडी वुडहाउस नेपिनाक ने कहा कि ये पुनर्वापसी उनकी कहानी को अपनाने, साझा करने और बताने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। उन्होंने कहा, मैं दिवंगत पोप फ्रांसिस और वर्तमान पोप लियो दोनों को सम्मान देती हूं कि उन्होंने फर्स्ट नेशंस के लिए सही कदम उठाया और हम इस यात्रा को आगे बढ़ाने की और उम्मीद करते हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। 2 साल से भी अधिक समय के बाद गाजा में चल रहे अस्थिर युद्ध विराम के बीच क्रिसमस समारोह एक बार फिर बेतलहम लौट आया है। 2023 से इजराइल नियंत्रित वेस्ट बैंक, जिसे जीसस क्राइस्ट की जन्मस्थली माना जाता है, में अधिकांश दुकानें बंद थी और सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन इस साल लोग चौक में क्रिसमस ट्री लाइटिंग समारोह देखने के लिए इकट्ठा हुए और रेस्टोरेंट परिवारों से भरे हुए दिखाई दिए। स्थानीय सरकार के अनुसार बेतलहम के लगभग 80% लोग अपनी आय के लिए पर्यटन पर निर्भर करते हैं। इजरायली बलों द्वारा वेस्ट बैंक में अभियान बढ़ने के बीच बेतलहम के मेयर माहिर कनावती का कहना है कि आर्थिक मंदी बेहद विनाशकारी रही है। और अंत में खबरें भारत से। भारत में कर्मचारियों के वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 पेश किया गया है, जो ऑफिस टाइम के बाद कर्मचारियों को काम से जुड़े कॉल और ईमेल का जवाब देने से कानूनी रूप से मुक्त करने का प्रावधान करता है। बिल के मुताबिक ऑफिस आवर्स के बाद बॉस का फोन उठाना या ईमेल का जवाब देना अब अनिवार्य नहीं होगा और ऐसा ना करने पर कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। यदि कोई कंपनी अपने कर्मचारियों पर दबाव बनाती है तो उसके कुल वेतन व्यय का 1% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले द्वारा पेश किया गया ये प्राइवेट मेंबर बिल बढ़ते मानसिक दबाव और असंतुलित वर्क कल्चर को सुधारने की कोशिश है। सुले का कहना है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने काम को लचीला बनाया है, लेकिन इससे प्रोफेशनल और निजी जीवन का संतुलन टूट गया है, जिसका असर सीधे कर्मचारियों की सेहत पर पड़ रहा है। बिल अभी सिर्फ लोकसभा में पेश हुआ है, इसे पास होने के बाद राज्यसभा भेजा जाएगा। हालांकि इसके कानून बनने की संभावना फिलहाल कम मानी जा रही है। इसी के साथ 7 दिसंबर 2025 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/Hindi पर जाएं।
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.